पाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जनक जी के यहां रंगभूमि पर भगवान पधारे गुरु जी के साथ। इधर सीता जी आ गई और सीता जी ने राम जी को देख लिया, राम जी ने सीता जी को देख लिया। सब लोगों के मन में यही आ रहा है कि जैसे हमारे मन में ये बात पैदा हो रही है, वो जनक जी के मन में क्यों नहीं पैदा होती। जनक जी अपना शिव धनुष का प्रण है इसको छोड़ करके मेरी सीता और मेरा विचार ऐसा करके राम को दे देना चाहिए, लेकिन चलती नहीं है। सब सभा लग गई, बैठ गई। तब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को बुलाया, वे बिरदावली गाते आवे, महाराजा अधिराज विरे महाराज जनक जी की जय हो। सब लोग चुप हो गए। राजा ने कहा कि हमारा प्रण आज सभा में सुना दीजिए। बोले बंदे बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कही हम भुजा उठाई विशाल। सुनो सुनो सभा सदो सुनो, हम महाराज जनक जी की ओर से आप सबको ये सूचना दे रहे हैं। महाराज जनक जी की ये प्रतिज्ञा है, आप उस प्रतिज्ञा को सावधान से सुनो, सावधानी से सुनो। आप लोग जितने यहां राजा लोग हैं, आपके भुजाओं का बल तो चंद्रमा के समान है और ये शिवजी का धनुष राहु के समान है जो बड़ा कठोर है, बड़ा भारी है, आप सबको मालूम है। हे देश देशांतर के आए हुए राजाओं, आपको इस बात का भी ज्ञान होगा कि इस धनुष को उठाने के लिए रावण और बाणासुर जैसे महान शूरवीर योद्धा भी आए थे और इस धनुष को देखकर वे चुपचाप वहां से खिसक गए। भगवान शंकर का ये कठोर धनुष जो आज इस सभा में रखा हुआ है, इसको तोड़ने पर केवल एक सीता ही नहीं मिलेगी, उसको इसके साथ साथ संपूर्ण त्रिभुवन में उसकी कीर्ति फैलेगी कि देखो सीता को भी प्राप्त किया और कीर्ति को भी प्राप्त किया। और हमारे महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बिना किसी प्रकार का विचार किए हुए अपनी पुत्री से उसके गले में जयमाला डलवा देंगे। बंदी लोग सुनकर, बंदी लोगों की बात सुनकर सब चुप हो गए। वहां पर बड़े बड़े अभिमानी राजा लोग बैठे हुए थे। अच्छी बात है, अभी हम उठते हैं, ऐसा क्या धनुष है, ये धनुष में तो कहीं से लाकर के ही तो रखा है। ये धनुष जब तोड़ने की प्रतिज्ञा कर रहा है राजा, इसका मतलब ये तोड़ने लायक तो है ही, टूट तो सकता है, तभी तो प्रतिज्ञा की। चलो हम उठते हैं। अपने अपने इष्ट देव का स्मरण किया, परिकरी बांधी, कमर कस करके ताल ठोक करके गए, तम की ताक की तक शिव धनु धर रही, और वहां जाकर उसको खूब देखा, उठाया, उठाने का कोशिश करते हैं वो, पर वो उनसे उठने की तो बात ही क्या है, वो सिरकता नहीं है, तिल भर भी सिरकता नहीं है। एक गया, दो गया, चार गए, पांच गए, सो गए, कितने ही गए, जो राम जी की शोभा देख रहे थे, जो सीता जी को जगदम्बा मान रहे थे, वे मनी मन में राम और सीता को प्रणाम कर रहे थे। आए तो थे धनुष को तोड़ने के लिए, जब राम और सीता को देखा तो भाव बदल गए। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या पता था कि यहाँ राम जी आएंगे, हमें क्या पता था कि सीता ऐसी राजकुमारी राम के लिए ही विधाता ने बनाई, हमें मालूम नहीं था। हम तो आए सोचे जैसे और समारोह में जाते ऐसे आए, कोई नहीं गए जो समझदार थे, उनमें जिनके मन में भक्ति का थोड़ा सा भी भाव था वो नहीं गए। लेकिन तमकी धरई धनु मूढ़, मूक मूर्ख राजा, वे लोग खूब तहस में आकर के, जोश में आकर के, तमकी धरई धनु मूढ़ निप, उठ ही न चल ही न जाए। वो उस समय में उसको उठाने की चेष्टा करते हैं पर उठा नहीं जाता है, तो वे लोग घबरा जाते हैं और बड़े लज्जित होकर के अपनी जगह पर आकर बैठते हैं। जब वो उठते हैं तो सारी दुनिया देखती है उनको, हो ये अच्छा साहब, वहां जाके खूब मेहनत करते हैं, सिर किए हुए आकर के बैठ जाते हैं, यू यू करने लग जाते हैं। फिर दूसरा राजा उठता है ना, तब जाकर के वो सिर ऊंचा करता है वो देखता है कि अब इसकी तरफ बाबा दृष्टि गई, अब हमारा तो पिंड छूटा है, उठे ही न चले ही लजाए, लाज आती है। इधर क्या हो गया कि मनो पाई भट बाहु अधिक अधिक गरुआए, और वो जो धनुष है वो जितने लोग उसको उठाते हैं उतने उसमें बल, उसमें भारीपना आता है, जैसे राजाओं का बल ये खींचता हो, जैसे बाली है उसको राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, कि राम जी सामने चले जाते तो राम जी का आधा बल बाली में आ जाता, ऐसा बाली के पास में वरदान था। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नहीं है। राम ने देखा कि अपन तो सामने भी है और पीछे भी है, अपनी व्यापकता में तो कोई कमी है नहीं, कौन कहता है कि हमने पीछे से मारा। बाली से पूछो कि बाली तुमने सबदर्शी कहा है कि नहीं, अपने तारा को कहा कि नहीं सबदर्शी। राम जी सबको देखने वाले, सदा देखने वाले और सदा सर्वदा रहने वाले, तो तारा को बाली ने कहा कि भाई मैं तो राम जी के हाथ से मरूंगा, जो कदाचि मोहि मार रही तो मैं हूं सनात। ऐसे बहुत पड़ी कहा है प्रिय, मरने दो अब मेरे को। किसी ने कहा ए बाली तेरे पीठ पीछे से मार, सामने कौन था मेरे, पीठ पीछे राम जी ने बाण मारा तो सामने कौन था, सामने राम जी नहीं है क्या बाली तो बाली था ना। इसी प्रकार से मनव पाय भट बाहु बलू, मानो वो धनुष है वो राजाओं का बल लेकर के ज्यादा वो भारी होता चला गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि 10,000 राजाओं ने एक साथ चेष्टा की, अब कहते हैं 10,000 राजा एक साथ चेष्टा की क्या उठाने की, यदि कर भी देवे तो भी कोई हर्जे की बात नहीं है, पर 10 भूप सहस 10 एक ही बारा हो, इसका थोड़ा रहस्य है क्या कि सीता जी का स्वयंवर कितनी बार हुआ है, तो एक एक बार में 10,000 राजा लोग आए, 10,000 10,000 लगा। ये रावण और बाणासुर उस समय थे क्या राम जी के समय, रावण बाणासुर रावण बाण महाभट भारे। यदि यह कह दें कि रावण और बाणासुर ये नहीं थे, राम जी जिस समय में स्वयंवर में थे तब नहीं थे, तो मंदोदरी ने कहा है रावण से कि आपको सीता इतनी प्रिय थी तो चोरी करके क्यों लाए, आप वहां अयोध्या में स्वयंवर में ले आते, हम आपका बहुत स्वागत करते, चोरी क्यों की आप। इसका मतलब तो यही है कि रावण वहां था। और अब यहां धनुष टूटने के बाद दशरथ जी के पास जनक जी के दूत जाएंगे और वो दूत जाकर के दशरथ जी को पूरी बात सुनाएंगे। वहां पर भी यही कहा कि महाराज वो रावण जो अपने हाथों में कैलाश पर्वत को गेंद की तरह से उछाल उछाल करके खेलता है, वो रावण वहां महाराज धनुष को तोड़ नहीं सका। और यदि रावण वहां है, अब इसका अर्थ है कि रावण वहां है, यदि रावण वहां है तो भाई राम जी ने तो अवतार रावण को मारने के लिए लिया था, यहां थोड़ी बहुत आपस की दृष्टि तो मिलनी चाहिए थी, रावण को एक बार देखते तो सही। अरे यहां इतनी इतनी दृष्टि चल रही है आपस में, कितने ही राजा एक टक होकर के चकोर की तरह से राम जी को देख रहे हो, तो उनमें से रावण भी तो आना चाहिए। रावण को अरे ये कौन है भाई, रावण को भी वो अच्छे लगने चाहिए, प्रिय लगने चाहिए। कुछ रावण का भाव और रावण का कोई भाव नहीं आया, इसलिए कैसे कहें कि रावण वहां था और कैसे कहें कि नहीं था, यहां खुद बंदीजन। अब ये बंदीजन जो बोल रहे हैं ना, ये बंदीजन पीछे के स्वयंवरों की बात बोलते हैं, रावण बाण महाभट भारे देखि सरासन गवन सिधारे, ये पीछे की बात बोलते हैं, इस स्वयंवर में नहीं थे। तो भूप सहस दस एक ही बारा, दस दस हजार राजा लोग एक एक स्वयंवर में आए, एक एक बार वे इसको उठाने लगे तो उठा ही नहीं। कैसे नहीं उठा कि जैसे कामी के वचन सुनकर के सती का मन हिलता नहीं, ऐसे वो सिरका भी नहीं, हिला भी नहीं। और जो राजा लोग उसको उठाते थे वो ऐसे उपहास के पात्र होते, हंसी के पात्र होते, जैसे कोई साधु को ये धनुष तोड़ने लायक मालूम नहीं दिया। जिस विधाता ने बड़ी सुंदर सीता बनाई, जिस विधाता ने विजय बनाई, कीर्ति बनाई, उस विधाता ने आज संसार में सीता को, कीर्ति को प्राप्त करने का किसी पुरुष को नहीं बनाया। धिक्कार विधाता को, धिक्कार आप लोगों को, कोई धनुष को नहीं तोड़ सका, आप में से किसी ने यह लाभ प्राप्त नहीं किया। अरे इसको तोड़ने की बात तो अलग थी, मैं यहां देख रहा था कोई इसको तिल भर भी हिला नहीं सका। चले जाओ अपने अपने घर, सोचा था कि पृथ्वी शूरवीरों से भरी हुई है, जाओ अपने देशों में जा जा करके अपने वीरता का बखान करना कि जनक के वहां गए थे मुंह लटका के आ गए। अब मत कहना कि हम कोई शूरवीर है, हमारे पास कोई शूरवीरता का नाम ही मत लेना, शूरवीरों से पृथ्वी खाली हो गई, रोता रहूंगा जिंदगी भर कि मेरी बेटी मेरे घर पर बैठी है, मेरे भाग्य में यही सही, विधाता ने मेरी बेटी का विवाह नहीं लिखा है। क्या विवाह हो नहीं सकता था, मैं चाहूं तो किसी के साथ विवाह कर सकता हूं, लेकिन मेरा प्रण है राजाओं, इस प्रण को मैं नहीं तोड़ सकता, क्योंकि प्रण के टूटने पर सारे पुण्य समाप्त होते हैं। मेरे सामने दो दुख है, एक तरफ मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, एक तरफ मुझे अपना पण है, प्रण है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसमें से प्रण को मैं नहीं तोड़ूंगा, मेरी बेटी कुमारी बैठी है तो बैठी है। जो जानते हो बिनु भट भूमि भाई, यदि मैं सोचता कि अरे कोई पृथ्वी पर राजा लोग सूरवीर रहे नहीं, प्रणी क्यों करता भाई, क्यों मेरी हंसी करवाता यहां, जाओ अपने अपने घर जाओ। ऐसे जनक जी ने भरी सभा में बोल दिया। जो जो जनक जी बोल रहे थे ना, त्यों त्यों लक्ष्मण जी यू टेढ़े टेढ़े देख रहे, और उनके रदपट उनके हो कैसे बोलता है ऐसे बोल रहे, रदपट का तो नयन दिशो है, आंखों के अंदर क्रोध और होठों के अंदर ये फड़कना हो रहा था। पास में राम जी बैठे हुए, कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान, अनाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। राम जी का डर लग रहा था कि नहीं क्या बोलता है, बचपना करता है तो चुप रहे बेचारे, भगवान ने टोका नहीं लेकिन उनके अंदर डर बैठा हुआ था। अभी मुझे बड़ों के सामने कैसे बोले, जहां बड़े लोग बैठे हुए होते हैं वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। आजकल देखते हैं हम, आप भी देखते ही है, पिताजी बैठे रहते हैं, बच्चे बस ची ची करते रहे, बोलते रहते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम ये कर देंगे और वो कर दे। अरे भाई तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, इनका बोला ऐसा लगेगा, ये तो कुछ नहीं जानते, हम करेंगे सब। तो कहीं न सकत, कितनी लाज है छोटे भाई को बड़े भाई के प्रति, भाई कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बान। फिर राम जी को प्रणाम किया, महाराज अब तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, राजा था मेरे से प्रणाम किया और खड़े हो गए। अब देखो लोग कहते हैं उन्होंने जाके जनक जी को फटकारा, जनक जी को नहीं फटकारा, वो चले आए आगे और जनक जी को तो कहा नहीं, जनक जी को सुनाया और कहा राम जी को, कितनी बढ़िया शक्ति है हे राम, रघुवंशियों में जहां कोई विराजमान होता है वहां ऐसी बात हम लोग सुन नहीं सकते हैं, जनक जी ने जैसी अनुचित वाणी कही है आपके विराजमान होते हुए वो हमारे कानों के अंदर फट रही है, बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। हे सूर्य कुल भूषण, हे सूर्य कुल के, सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य भगवान, सूर्य माने भगवान राम, सुनो, मैं स्वभाव से नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मण का स्वभाव बड़ा उत्तेजित होता है, बहुत जो है लक्ष्मण क्रोधित होता है, उससे नहीं कह रहा हूं, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल उछाल करके बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं शेषनाग हूं। जनक जी को बता रहे, जनक जी आपने कहा कि मैंने देवताओं को देख लिया है, यहाँ की यहाँ देवता लोग मनुष्य के रूप में आए, असुरों को देखा है, तुमने मुझे नहीं देखा और राम जी को नहीं देखा, शेषनाग को नहीं देखा है, विष्णु को नहीं देखा है, देवताओं को और असुरों को देखा है तुमने, कंदू की वो ब्रह्मांड उठाऊं, एक गेंद की तरह से मैं इस ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, और क्या है, और इतना ही नहीं, काचे घट जिमी डारो फोरी, और इसको उठा करके पटक दूं तो ब्रह्मांड फूट जाए, जैसे कच्चा घड़ा होता है कर दे फूट जाता है। सकौ मेरु मूलक जिमी तोड़ी, और सुमेरु पर्वत जिसके लिए ओहो साहब है, इसको यूं गाजर मूली की तरह उखाड़ दू जमीन में, उखाड़ के बता दू ये राजा सुमेरु पर्वत आपका। बार 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 ये शिव धनुष की रट लगा रखी है, है पुराना एक नजारे जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ कूड़े कचरे में पड़ा हुआ ये शिव धनुष लाकर के यहां अपनी बड़ाई करते हो, ये सब आपके प्रताप के कारण से कर सकता हूं महाराज। नाथ जान यस आयुष हो, आप अपना समझ मुझे आदेश तो दो, कौतुक करके बताऊं इनको, एक खेल करके बताऊं, सब लोग देखें कि आज अयोध्या से कोई आए हैं, विश्वामित्र का कोई शिष्य है, राम का कोई भाई है, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, आप आज्ञा दीजिए, कमल नाल के समान इस धनुष को उठा दूं। कमल नाल, कमल तो ऊपर रहता है, उसके नाल नीचे रहती है, भी थोड़े जिसकी सब्जी बनती भे भे करके सब्जी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाओ इस धनुष को, कमल नाल के उठा लू, और सत जोजन ले प्रमाण धाओ, 100 योजन तक 400 कोस तक दौड़ करके आकर के बता दो ये रखो तुम्हारा धनुष। अरे लक्ष्मण, तोड़ने की बात है या इसको उठाने की और लेकर के भगने की बात नहीं है? तुमने तोड़ने की तो बात कही नहीं कि तोरो छत्र का दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। बरसात में छोटे छोटे जो छत्ते उगते हैं उसके समाने की तोड़ दूं मैं इसमें, क्या है उसमें तोड़ना? आपकी कृपा से हो, मेरे पास नहीं है। और यदि ऐसा न करूं तो आज के बाद जीवन भर धनुष बाण उठाऊंगा ही नहीं। राम जी महाराज सुन के बहुत खुश हुए। राम जी तो खुश हुए, परंतु भाई पृथ्वी डगमगाने लग गई हो। शेषनाग है महाराज, शेषनाग थोड़ा सा फण यूं करें तो क्या 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 हो जाए। सब लोग डर गए लक्ष्मण जी की बात सुन करके। अब देखो उल्टी बात है। सिया ही आहारस जनक पछिता जनक सकुचाने। सीता जी के हृदय में तो हर्ष हुआ और जनक जी संकोचाने लगे। होना ये चाहिए कि सीता जी तो संकोच करें और जनक जी हर्षित होवे, पर यह सिया ही आहारस जनक सकुचाने। सीता जी के मन में हर्ष हुआ और जनक जी संकुचित हो गए। ये संकोच पड़ना है ना, ये जनक जी के लिए बहुत आनंद की बात थी। जनक जी यही तो चाहते थे कि कोई मेरी बात काटे तो सही। सीता जी को जो हर्ष हुआ है वो इसलिए हुआ कि जिसका छोटा भाई इतना कर सकता है तो फिर बड़ा भाई तो कर ही चुका है। सिया ही हर्ष सीता जी के मन में आया कि भाई मेरा मन तो सांवले में था, इस गोरे में मेरा मन नहीं है। यदि ये तोड़ भी देवे तो मेरी जयमाला इसमें नहीं डाली जाएगी। जैसा लक्ष्मण जी बोल रहे हैं उसे तोड़ ही सकते हैं, पर नहीं। सीता जी को हर्ष ये हुआ कि ये कायदे विरुद्ध चलने वाला नहीं है, और जिसका छोटा भाई इतना काम कर सकता है तो बड़े भाई के द्वारा तो हो ही चुका है। इसलिए सीता जी ने देखा अब धनुष टूट गया, हर्ष हो रही, हर्षित हो रही है सीता जी। और जनक सकुचाने, जनक जी को संकोच हुआ कि छोटा सा बच्चा, देखो छोटा सा बच्चा और भरी सभा। और जनक जी के मन में प्रेम भी तो था। देखो कभी कभी आप देखो अपने परिवार में दादाजी बैठे रहते हैं, पिताजी बैठे रहते हैं और बच्चे होते हैं, वो किसी अच्छे काम में लागे करके दादाजी को भी कुछ सुनाए, पिताजी को सुनाए तो राजी होते हैं, वो राजी होते हैं। एक बार क्या हुआ कि दिवाली पर कमरे साफ करते ही सब कमरे साफ कर रहे थे, तो एक पिताजी थे वो कमरा साफ करते करते एक मार्क लिस्ट देखी बच्चे की, 10 में से 2 नंबर, कहीं 10 में से 1.5 नंबर, कहीं 10 में से 3 नंबर, कहीं 10 में से फिर 2 नंबर, ऐसे मार्क लिस्ट देखी तो लेकिन क्रोध आया उनके। अरे तू पढ़ता नहीं है, देख 10 में से 2 नंबर आया, 10 में से 1.5 नंबर आया, 10 में से ये आया, ये कोई पाठ है, तू पढ़ता नहीं, पीटने लगे बुरी तरह से। वो बच्चे ने देखा कि भाई ये मुझे पीट रहे हैं पिताजी, मेरी तो परीक्षा ही अभी थोड़े ही दिन हुई है, ये मार्क लिस्ट ऊपर से निकाले हैं यहां पुराने कागजों में से, तो कैसे? तो वो पिताजी मारे पीटे वो दे, वो रोता रोता देख दे, पिताजी पिताजी इस मार्क लिस्ट पर तो आपका नाम है, मेरा तो नाम ही नहीं है। पिताजी देख करके चुप हो गए, संकोच में पड़ गए। पिताजी बड़े संकोच में पड़ गए, ये तो मेरे ही मार्ग दृष्टि है बचपन की और ये मैंने इसको यू ही मारा। वो जो संकोच होता है ना, वो संकोच बहुत अच्छा होता है। तो सीआई हर्ष जनक संकुचाने कई देर, और गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुल का है, उनके बार 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 हर्ष पैदा हो। राम जी सराइए बैठ जाओ, तो आके बैठे प्रेम समेत निकट बैठा रहे, कांप रहे थे ना, पीठ थप थप आई, बैठ जाओ। बड़ा भाई के, बड़ा भाई तो भाई पिता तुल्य होता है, वो भरी सभा में डांटे डपटे फटकारे थप्पड़ मारे। छोटा भाई तो राजी होता है कि देखो आज हमको कहने वाले तो है। तो मुदित भये पुनी पुनी मूल प्रेम समेत निकट बैठा रहे। अब देखो कई देर तक सन्नाटा छाया रहा। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेहमय वाणी। अब विश्वामित्र जी महाराज स्नेह की वाणी से बोले, अच्छा समय देख करके, देखते थे अब वो घड़ी थी कि क्या था, समय अच्छा कौन सा होता है, ये दोनों श्वास जब चलते हो ना सबसे अच्छा समय, या तो ये चलेगा या ये चलेगा, तो दोनों ये श्वास चलते हो, इड़ार पिंगड़ार ये सुषुम्ना दोनों चलती है, सुषुम्ना होती है। लोग कहते ना हमने शकुन लिया, शकुन क्या लिया, या तो ये नाक चलेगी या ये चलेगी, अपने दोनों चले वो सबसे बढ़िया समय, दोनों चले सबसे बढ़िया। हाँ जाओ राम उठो, और इतनी देर तक शायद एक ही नाक चलती होगी। अब क्या है वो तो विश्वामित्र जी जाने। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी, बहुत स्नेह से बोले, उठाओ राम उठो राम। देखो यूं बैठे थे, इधर गुरु जी, इधर राम जी, इधर लक्ष्मण जी, यूं बैठे थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा उठो सुनऊ राम, उठाऊ राम बन जाऊं भव चापा, उठो और ये भव चापाओ, कैसी दो तरफ चलने वाली बात बोलते हैं, मेटो तात जनक परितापा, जाओ जाओ राम तुम उठो और भव चापा, भव चापा माने, भव चापा का अर्थ है शंकर जी का धनुष। अरे एक भव चापा, भव माने संसार में जो हमारा जन्म मरण होता है, उस जन्म मरण का जो चाप माने कदम है, ये जन्म मरण का जो कदम है इसको तुम मेट दो। तुम यहां विवाह करोगे तो यहां विवाह करने पर जन्म मरण का कदम मिट जाएगा, जनक जी का मिट जाएगा, हमारा मिट जाएगा, जो आनंदित होंगे उन सब का मिट जाएगा। उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, और भव माने शंकर, चाप माने धनुष, दोनों तरफ की बात है। उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा, ध्यान देना ये कह रहे जाओ जनक जी का संताप मिटाओ। एक जनक जी का ही था क्या, यहां तो कुछ एक राजाओं को छोड़ दो बाकी सबके संताप था, देखा जाए तो सबके ही संताप था। जो राजा लोग धनुष नहीं तोड़ सके उनको भी संताप था कि देखो हमने धनुष नहीं तोड़ा। तो यहां ये कहना चाहिए था कि मेटव तात सकल परितापा, सबका तुम जो है परिताप मिटाओ, सबका तो नाम लिया नहीं, जनक जी का नाम लिया। क्यों, क्योंकि वाणी में जनक जी ने ही अपना क्षोभ बताया है, बाकी मन ही मन में हो रहा है, बाकी किसी ने प्रकट नहीं कहा। तो जनक जी ने प्रकट में कहा तो भाई विश्वामित्र जी ने ही कहा जनक जी का दुख मिटाओ। मेटो तात जनक परितापा, ध्यान देना हो ये विश्वामित्र जी कम नहीं बोलते हैं, मेटो तात जनक परितापा। राम तुम्हारे जनक है ना, तुम्हारे जनक कौन है, दशरथ जी, दशरथ जी ने तुमको हमारे साथ भेजा था, उस समय बड़ा उनको संताप हुआ। यहां तुम्हारी सूर्यता की बात देखेंगे कि विश्वामित्र के साथ गए, सीता की प्राप्ति हुई हुई, तो वो सुनेंगे तुम्हारे पिता, तो उनका भी परिताप दूर हो जाएगा। इन जनक जी का तो हो गई, तुम्हारे जनक जी का भी, तुम्हारे पिता का भी परिताप दूर हो जाएगा, संताप दूर हो जाएगा। कैसी दोनों तरफ की बात बोलते हैं। उठाऊ राम भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परितापा, दशरथ जी का परिताप भी तुम मिटाओ। राम जी महाराज ने गुरु आज्ञा को सुना, चरणों में प्रणाम किया, न कोई हर्ष हुआ न कोई विषाद हुआ, कोई हृदय में हालचल नहीं हुई। धनुष टूट जाएगा तो ठीक है, धनुष नहीं टूटेगा तो ठीक है, सीता का विवाह हो जाएगा तो ठीक है, सीता जी का विवाह नहीं होगा तो ठीक है, हर्ष विषाद न कछु उरावा। और अपने स्वाभाविक चाल के अंदर वे खड़े हुए, खड़े हुए तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं ठवनी जुआ, जैसे कोई ठवनी जुआ मृगराज लजाए, कोई जवान सिंह है और जैसे यू शान से यू खड़ा होता है, ऐसे राम शान से खड़े हुए। ठवनी जुआ मृगराज लजाए, सिंह भी आज इनके सामने लाज को, सिंह होता है वो डरता है, सिंह के अंदर भय नाम की चीज नहीं होती, वो सिंह होता है वो बहुत साहसी होता है, निर्भय होता है, डरता ही नहीं। ठवनी जुआ मृगराज लजाए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे उदयाचल पर सूर्य पैदा होता है, सूर्य प्रकट होता है, ऐसे अपने मंच से भगवान प्रकट हुए। तो सूर्य क्या है, जिस समय प्रकट होते हैं उस समय में कई तो चीजें खिलती है और कई मुरझा जाती है, कई चीजें प्रसन्न होती है कई मुरझा जाती है। तो विकसे संत सरोज सब, ये संत रूपी जितने कमल है वो तो भगवान रूपी बाल सूर्य के उदित हो जाने पर बड़े प्रसन्न हो गए। और लोगों के नेत्र रूपी जो आंख, नेत्र रूपी जो भौरे है वो प्रसन्न हो गए, अर्थात यूं देखने लगे लोग राम जी को, संतों के नेत्र। और सूर्य क्या करता है, रात्रि का नाश करता है। तो जितने राजा लोग यहाँ आए थे, जिनके मन में ये आशा थी, उनकी आशा राम रूपी सूर्य के उदित हो जाने पर नष्ट हो गई। और वचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उन राजाओं के वचन रूपी जो तारे थे, उन तारों में, तारा समुदाय में अब कोई प्रकाश नहीं रहा। सूर्य का जब प्रकाश होता, अब कहां तारे कहां दिखते हैं, अभी तारे नहीं दिखते हैं, क्योंकि तारे तो है ही, सूर्य का इतना प्रकाश है कि तारों का प्रकाश उसमें लुप्त हो गया कहीं। और जो अभिमानी राजा लोग थे वो मानो कुमुद है, वो संकुचा गए, कुमुद नहीं संकुचा जाती है। और कपटी राजा जो उल्लू के समान थे वो इधर उधर छिप गए, उल्लू को सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखता है, रात्रि में खूब अच्छा दिखता है, सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखता। और भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो चकोर रूपी मुनि है, देवता है, ये शोक रहित हो गए। रात होती है, बताया था कि चकवा है वो यूं रहता है, उस चकवी यूं रहती है, और दिन होता है तब देखते हैं। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जनावई देवा, राम जी महाराज ने अपने गुरु जी के चरणों में वंदना की और कहा अच्छा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो जाए, या जाओ बेटा जाओ, आशीर्वाद दिया। क्यों, क्योंकि राम सब जितने भी वहां ये आए थे राजा लोग, अपने अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे थे मन में, तो इन्होंने गुरु जी की पूजा की, पुष्प वाटिका में गुरु जी की आज्ञा से गए थे, सीता जी माँ की आज्ञा से गई थी। अब देखो क्या होता है, राम जी महाराज जिस समय वहां धीरे धीरे स्वाभाविक चाल से चलते हैं, मत मंजवर कुंजर गामी, राम जी की चाल है वो मदोन्मत हाथी के समान ही झूमते हुए चलते हैं। राम जी की चाल देख करके सब नर नारी बड़े मुग्ध हो गए। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, सबने अपने अपने पितरों को, देवताओं को, इष्ट देवों को प्रणाम किया। तो कहने लगे हमारे आज तक के जितने पुण्य है बाबा, वो सारे के सारे पुण्य हम आज खर्च करते हैं, किस काम के लिए, कि शिवजी के धनुष को राम एक मृणाल के समान हल्केपन से तोड़ देवे। हे गणेश जी महाराज, स्थान बार बार धोक देवा में, गणेश गोसाई सबको प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, ये भावात्मक प्रसंग है। अभी राम राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाए, सीता मातु सनेह बस, बचन कहे बिलखाए। जब राम जी महाराज जो धनुष के पास आ रहे हैं ना, तब सीता जी की जो माँ है सुनैना जी, वो सुनैना जी उस समय में विमल हो गई, बताया जनक जी तो है ज्ञान में और सुनैना जी है भक्ति में, विमल हो गई। और अपने पास में सखियां थी, उन सखियों से बातें करने लगी और विलख होकर के, विमल होकर के कहने लगी, देखो सखी क्या बात है, जो हमारे रात दिन के हितेशी आदमी है वे लोग भी आज ही तमाशा देखने में लगे हुए हैं, अपनी कोई सहायता ही करने वाला नहीं है। अरे विश्वामित्र जी को जाकर बुझाओ, कहो कि हे गुरुजी, आप तो इन बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए लाए थे, इन बच्चों से ये हंसी ठिठोली क्या करवा रहे हो, ये बालक हसी हठी बल नहीं, ये छोटे बालक है, ये कोई हंसी मजाक थोड़ी, शिव जी का धनुष ये तोड़ेंगे, कहां कठोर शिव जी का धनुष, देखो कैसे गुरुजी ने आज्ञा दे दी, और ये बच्चे भी कैसे हैं जी, ये हठपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। अरे रावण ने बाणासुर ने भी जिसको छुआ नहीं था, और इनके सामने अभी बड़े बड़े राजा लोग इस धनुष के सामने हार खा बैठे, वो इतना कठोर भारी धनुष ये राजकुमार कैसे इसको तोड़ेगा। बाल मराल की बंदर ले ही, क्या कोई छोटा सा हंस भद्राचल पर्वत उठा सकता है, ऐसे ही क्या कोई राम है ये धनुष तोड़ सकते हैं। अरे बाबा गुरुजी को तो जाकर कहने की हिम्मत नहीं है तो नहीं है, लेकिन जाकर के अपने महाराज को तो कहो, जनक जी को तो कहो, इनको तो सब दो कहते हैं, जनक जी ओहो सयाना, इनका तो ज्ञान बड़ा विलक्षण है, सब सराते इनका ज्ञान इनकी बुद्धि, लेकिन आज इनका ज्ञान बुद्धि जाने कहां चली गई, ये क्या है देखो, ये प्रेम है प्रेम। जब भगवान में प्रेम बढ़ता है तब भगवान का ऐश्वर्य हृदय से उतर जाता है, भगवान में अपनापन होता है तब बड़प्पन नहीं लगता। देखो किसी माँ का बेटा कलेक्टर बन गया, वो घर में रहता है तो माँ को वो कलेक्टर नहीं दिखता है, दुनिया तो उसके बाहर खड़ी रहती है, कितने कहा कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब है साहब, कलेक्टर साहब है, और माँ है वो, माँ का मेरा बच्चा है, माँ उसको घर में ऐसे ही बोलती है, तू कहाँ गया, तू खाया कि नहीं, तू पिया कि नहीं, माँ के लिए कोई कलेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, माँ में प्रेम है प्रेम। दूसरे लोग हैं उनको उनको कलेक्टर का भय लगता है, क्योंकि उनके मन में प्रेम नहीं है, उनको तो अपना काम से मतलब है, लेकिन माँ है वो उसके साथ प्रेम करती है। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं जिनमें मधुर रस होता है, प्रेम रस होता है, वो भगवान का वैभव याद नहीं करते, याद कराने पर भी उनको वैभव नहीं दिखता। जनक जी की पत्नी कहती है कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाती न जानी, आज क्या हो गया, विधाता की गति को कौन पहचाने, आज जनक जी भी कुछ नहीं बोल रहे। जनक जी ने वो बात तो ठीक कही कि पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रहा, पर ये जनक जी आंखों से देख रहे और बोल नहीं रहे कि देखो इतने बड़े बड़े वीर है और कुछ नहीं, ये बच्चे है, अरे बच्चा है, कहीं हाथी छुल जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो एक सखी बोली, सुनो सुनो महारानी जी, संसार में जो चीज शक्तिशाली होती है उसकी बाहरी आकृति नहीं देखी जाती, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको मालूम है ना कि अगस्त ऋषि है, हाँ अगस्त ऋषि काय से पैदा हुए, घड़े से पैदा हुए, घड़े से पैदा हुए अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए कि नहीं, अब समुद्र अब घड़े से पैदा हुए, बाप कौन है, घड़ा, और पी गए किसको, समुद्र को, तो दिखने में छोटा लगता है लेकिन कई की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां होती है। ये सूर्य दिखने में कितना छोटा सा दिखता है, संपूर्ण त्रिलोकी का अंधकार दूर कर देता है। ये जो मंत्र जपते हैं छोटे छोटे से, राम 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 राम, बोलते 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 राम 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 राम, अर्ध नाम उद्धार, आधा नाम भी नहीं बोल सकते वहां पर, जब तीव्रता आती है राम राम में, एक ऐसी अंदर से झंकार होती है तो पूरा राम राम नहीं, ऐसे तो मंत्र परम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्व, छोटा सा एक बहुत छोटा सा मंत्र होता है, उस मंत्र के अंदर ब्रह्मा जी बस में हो जाए, विष्णु बस में हो जाए, शिव जी बस में हो जाए, देवता बस में हो जाए, है तो छोटा सा बस में। अब कोई कहेगी ये राम राम से क्या होगा, भाई है शक्ति है इसके अंदर। हाथी है, हाथी को बस में करना पड़ता है, तो हाथी का अंकुश कितना होता है, हाथी से बड़ा होता है क्या अंकुश, तो इतना साग होता है, पर अंकुश से बस में ज्यादा हाथी चिल्लाए करे ना, या माथे में उसका लगाते अंकुश, वो हाथी वही रुक जाता है। ऐसे दिखने में बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। देखो महारानी जी, आप तो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हमारे मन में सब में ये बात आ रही है कि राम इस धनुष को जरूर तोड़ेंगे। आप तो सकारात्मक विचार कीजिए ना। सखियों की बात सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई, मिटा विषाद, बड़ी अति प्रीति। एक तरफ तो ये बात हुई, अब सीता जी का माधुरी देखिए, तब राम ही बिलो की वैदेही। राम जी धनुष के पास आए, सबको देख रहे, सीता जी को देखा, राम ही तब राम ही बिलो की वैदेही, समय हृदय विनमति जयते ही। इधर सीता जी ने राम जी को देखा, तब राम ही बिलो की वैदेही, राम ही माने राम जी को सीता जी ने देखा। सीता जी को देखने के बाद अब वो मनी मन में स्मरण कर रही है, किसका, सबसे पहले महेश का, हे शंकर भगवान, हे पार्वती, बस आज मेरे जीवन का परीक्षा का समय है, मैंने आपकी जितनी सेवा की है उस सेवा के बदले में आप अपने इस धनुष को हल्का बना दीजिए। सीता जी से कहे, हे सीता जी, आप तो सर्वशक्तिमती है, आप सब कुछ कर सकती है, ये अभी जनक जी की बारात आई, सॉरी दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आएंगे, उस समय आप कितनी सिद्धियां दिखा देंगे, कितनों का भोजन का प्रबंध हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है, एक राम जी को पता है कि सीता की सिद्धियां है, जनक जी को पता नहीं। ऐसा वैभव, इतना उल्लास, इतना प्रबंध, आप में इतनी शक्ति, आप शिव जी का धनुष इसको हल्का नहीं कर सकती क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शिव जी का धनुष है, शिव जी के धनुष में मैं मेरी माया लगाऊं ये ठीक नहीं है, इसलिए शिव जी से ही प्रार्थना कर रही है, भवानी से ही प्रार्थना कर रही है, हरऊ चाप, आप इस धनुष की गरुता है, भारीपन है, इसको हर लीजिए। हे गणेश जी महाराज, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी बात सुनिए और इसके हल्के, इसके अंदर हल्कापन डाल दीजिए, गुरुता इसके निकाल दीजिए। सीता जी बार बार राम जी की तरफ देखती है, धनुष की तरफ भी देखती है, दोनों की तरफ देखती है, बड़ा बहुत विचित्र विचित्र भाव आते हैं, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, उनका शरीर पुलकित हो गया। अब देखो उनके आंसुओं के कई कारण हैं, एक तरफ तो पिता का वचन है और एक तरफ धनुष की कठोरता है, एक तरफ थोड़ा सा है कि यदि राम जी सफल नहीं हुए तो क्या होगा। ये माधुरी है, माधुरी भगवान में असमर्थता देखना, असमर्थता देखने में माधुर्य रस। एक तो असमर्थता देखते हैं अश्रद्धा से, अरे क्या है का? भगवान का ही करे, कहीं को नहीं करे, कहीं को नहीं भगवान, एक तो अश्रद्धा से करा, एक अरे भाई ये छोटे से है, ये कोमल है, क्या होगा इससे। तो ये जो है ना, प्रेम के अंदर जो सामर्थ्य नहीं देखना है वो माधुर्य रस है। कह धनुकुल से ऊंचाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि कई भांति धरोर धीरा, हे विधाता मैं कैसे धैर्य धारण करूं, विपरीत विपरीत चीजों को देख रही हूं। आप भी विचार करो, ये जो शीर्ष का पुष्प है, इस शीर्ष के पुष्प का जो छोटा सा कण है, उस कण को लेकर कोई हीरे को बेद सकता है क्या? नहीं बेद सकता। सिर से सुमन कण बेदी हीरा, तो इस प्रकार से ये हीरा बेधा नहीं, बीधा नहीं जा सकता। तो जो है शीर्ष सुमन कन बेदी हीरा, तो राम जी के कोमल हाथों से कठोर कैसे होगा। विचार करती है कि अपने तो कभी शिव जी को बोलते हैं, कभी पार्वती को बोलते हैं, कभी गणेश जी को बोलते हैं। अरे शिव जी का धनुष साक्षात चिन्मय तत्व है ना, भगवान के आयुध होते हैं वो, भगवान के समान चिन्मय होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म अपने को तो दिखता है कि ये शस्त्र है, शस्त्र नहीं है, चिन्मय शक्ति है भगवान की। अष्टभुजा भगवान के होते हैं, उनमें धनुष बाण वगैरह ये भी चिन्मय होते हैं, शास्त्रों में आता है भागवत आदि में। तो अब वो पार्वती ये सीता जी क्या करती है, सकल सभा के गति में भोरी, अब वो ही सब चाप गति रे, हे शंकर जी के धनुष अब तेरे ही शरण है, तुम ऐसा हो जाओ। कैसा कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अपने अंदर जो कठोरता है जड़ता है वो तो तुम लोगों पर डाल दो। रहो हरऊ रघुपति ही निहारी, होई हरऊ रघुपति ही निहारी, आप खुद हल्के बढ़ जाओ, अब आप ही ऐसा हो जाइए। ऐसे समय में सीता जी की जो व्याकुलता बढ़ी है वो थोड़ा सा भी समय, लव निमेश थोड़ा सा भी जो समय है वो सीता जी के लिए एक एक युग जितना लंबा हो गया। प्रभु ही चिताय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिद मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। देखो सीता जी का मुख क्या है, चंद्रमा है, और उसके अंदर जो दोनों नेत्र हैं ये क्या है कि चंद्रमा रूपी डोले के अंदर दो मछलियां हैं। मछलियां, वो मछलियां क्या करती है कि बड़ी चंचल है, मछली पानी में भी होती है। तो सीता जी के नेत्र हैं वो राम जी को भी देखते हैं और पृथ्वी को भी देखती है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा रूपी डोले के अंदर दो मछलियां हैं, वो कामदेव की मछलियां यू तड़प रही है, यू देख रही है सीता जी की ये आंखें। प्रभु ही चिता है, पहले तो भगवान को देखती है, प्रभु ही चिता है पुण्य चिता व मही, और फिर पृथ्वी को देखती है। राजत लोचन लोल, ऐसे उनके चंचल नेत्र हैं, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। खेलत मन सिद मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। डोल माने डोली, डोल पानी का होता है वो। तो चंद्रमा रूपी डोली के अंदर मीन जुग दो मछलियां है वो उसके अंदर नाच रही है। सीता जी के लिए लिख रहे हैं, गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। देखो इस समय में चंद्रमा जब ये मुख है ना, तब चंद्रमा का मुख है, तो गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। चंद्रमा रात्रि में खिलता है, तो लाज रूपी एक ऐसी रात्रि आ गई कि वो अपनी बात रूपे भौरे को, जो कि भौरे के अंदर ये कमल के अंदर भौरा रुक जाता है और वो वहां पर पड़ा रहता है रात भर, ऐसे ही सीता जी की जो वाणी रूपी अक्षर रूपी भौरे है वो मुख रूपी कमल के अंदर यूं ही धंस गए, वो बोली नहीं। क्यों? कि प्रगटन लाज निशा अवलो की, रात्रि के अंदर यूं कमल नहीं मुरझा जाती है तो भौरे उसके अंदर रह जाते हैं। ऐसे लाज रूपी रात्रि में ये मुख रूपी पंकज है, इसके अंदर वाणी के अक्षर रूपी भौरे गुप्त रहे, सीता जी कुछ बोली नहीं, बोल क्या सके, वहां क्या बोले वो। उनके आंख से आंसू भी है ना यू सीधे सीधे नहीं पड़े, उनके आंख के कोने कोने में आंसू आ जाए वो, बस इतना। वो रोना नहीं चाहती है, जैसे कृपण कर सोना, जैसे कंजूस आदमी सोने को यूं अपने में बचाता है, ऐसे सीता जी अपने प्रेम को छिपाती है। कितना ये उपदेश दे रही है सीता जी सब लोगों को कि भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसको बिल्कुल छिपाना चाहिए। आप देखिए कितनी बढ़िया बात है, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरज प्रतीति उरानी। सीता जी व्याकुल हो गई, सीता जी को राम जी क्यों मिले? धनुष टूटा इसलिए नहीं मिले, बल्कि सीता जी राम जी के लिए व्याकुल हो गई, राम जी के बिना रह नहीं सकी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरज प्रतीति उरानी, तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। मैं तन से मन से वचन से मैंने जो अपने मन में प्रण किया है, विचार किया है कि राम जी के चरणों में ही मेरा चित रहेगा, तो हे भगवान आप मुझे रघुवर की दासी बना दीजिए। ऐसी वो अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना करती है। जही के जही पर सत्य सनेहु, जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है उसको निश्चित मिलता है। सियई बिलो की तकेउ धनु कैसे, इधर राम जी महाराज सीता जी को देखते हैं और धनुष को भी देखते हैं। जैसे चितव गरुड़ लघु व्यालई, जैसे जैसे गरुड़ है वो छोटे से सांप को कैसे देखता है, क्या है कैसे? बेपरवाही से देखता है गरुड़, सांप पकड़ लेगा। जब राम जी महाराज की ऐसी दृष्टि गई ना उस धनुष पर, तब लक्ष्मण जी खड़े हुए, खड़े होकर के यूं अपने अंगूठे से जमीन को यूं दबाने लगे, चरण चापी ब्रह्मांड, और जोर से बोले सुनो सुनो दिशाओं के हाथियों, सुन लो बड़ा भारी धमाका होने वाला है, कोई घबराना नहीं। हे कमट, हे कछुए, तुमने समुद्र मंथन में बड़ी सहायता की थी, तुम भी सावधान रहना। हे शेषनाग, तुम भी सावधान रहना। हे कोल, हे वराह, तुम भी सावधान रहना। तुम सब इस पृथ्वी को धारण करने वाले हो, राम जी इस समय में धनुष को तोड़ेंगे, विस्फोट होगा, सावधान, ये मेरी आज्ञा है। अरे राम जी के रहते हुए तुम आज्ञा कैसे देते हो? शेषनाग, मैं राम जी के अधीन हूँ, भगवान विष्णु के अधीन हूँ, लेकिन मेरे अधीन तो तुम हो ना, तुमको मैं आज्ञा देता हूँ। हो सजग सुनी आये सुमोरा, भगवान जो है जिस समय में धनुष के पास आए, नर नारी सब अपना पुण्य मनाने लगे। किन्हीं के मन में संशय है, किसी के मन में अज्ञान है, किसी के मन में अभिमान है, अलग 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 बातें थी। देखो ये सब का सब समाज है, एक समाज। जैसे नौका के अंदर बैठते हैं तो कोई पूर्व का आदमी आता है, कोई पश्चिम का आता है, कोई दक्षिण का आता है, कोई कहाँ का आता है। गीता भवन में नौका है, हम बैठते हैं तो उस समय कोई तो दक्षिणी भारतीय है, कोई राजस्थान का है, तो कोई मध्य प्रदेश का है, तो कोई आसाम का है, कोई आदमी कोई बैठो। ऐसे यहाँ सब चाप बड़ मोहित उपाई, शिव जी का धनुष क्या है, बड़ा मोहित है, माने नौका है, नौका इसमें सब प्रकार की चीजें बैठ गई। क्या बैठ गई? कि सबका संशय, सबका तो संशय, सबका अज्ञान, सबका अभिमान, और जो है सबकी कातरता, सबका प्रेम, जनक जी का पछतावा, सीता जी का विलाप सोच, और सब रानियों का अपने अंदर जो है दुख, ये सब जो है सब शंकर भगवान के धनुष रूपी नौका के अंदर सामग्री बैठ गई। और इस नौका को कौन चला रहे हैं साहब? राम जी महाराज के जो बाहुबल है वो है अपार सिंधु है ये सागर, इसमें ये नौका चल रही है। पर यहाँ कोई केवट नहीं है, चाहे तो पार नहीं को कड़ु हारू, माने सब असमंजस में पड़े हैं यार, सब संशयापन्न है, सब संशयापन्न। एक गुरु जी को विश्वास है कि काम तो हो जाएगा, पर गुरु जी बोल नहीं सकते, इसलिए कहा कोई केवट नहीं है यहाँ। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपा यतन जानी विकल विशेषी। राम जी महाराज ने देखा कि अरे सब लोग ऐसे हैं जैसे कोई चित्र के अंदर होते हैं। चित्र में आदमी का मुंह फटा है तो फटा ही रहता है, जैसा है वैसा राम जी ने सबको देखा। और कृपा सागर भगवान ने सीता जी को भी देखा, सीता जी को देखा कि ये बहुत विकल हो रही है। अब देखो राम जी महाराज ने देखा ना कि सीता जी ज्यादा विकल हो गई है और एक छोटा सा भी क्षण इनका कल्प के समान हो रहा है। ऐसे समय में यदि सीता जी की घबराहट नहीं मिटी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, यदि आदमी प्यासा मर जाए उसके बाद यदि अमृत की भी वर्षा हो तो क्या फायदा। आज यदि सीता जी को मैंने इस विकल परिस्थिति में घबराहट में नहीं बचाया तो फिर मेरे इस बल का क्या होगा। खूब खेती सूख जाए उसके बाद खूब बरसात हो तो क्या होता है। जो काम समय पर कर लेते हैं बस वो बहुत अच्छा है, समय चुके पुनी का पछताने। ऐसा विचार करके जानकी जी को देखा और फिर गुरु महाराज को मनी मन में प्रणाम किया और क्या बताएं सज्जनों, उस समय में हे पार्वती राम जी महाराज ने कब तो धनुष उठाया, कब उसको चढ़ाया और कब उसको तोड़ा। वो तो डोरी लेकर के वो चढ़ा रहे थे, तोड़ थोड़ी रहे थे, ये डोरी लेके वो चढ़ा रहे थे, पड़ाक से वो टूट गया और इस बात का लोगों को कुछ पता नहीं चला और आवाज हुई तो पता चला। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजी बारग चले, इतना भयंकर शब्द हुआ कि वो जो घोड़े चलते हैं सूर्य भगवान के वो घोड़े डगमगाए, घोड़े चिक्करी दिग्गज डोल मई आई कोल कूरम कलमले, वो भी कलमल कलमल होने लगे। वही इधर उधर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने सावधान नहीं किया होता तो जाने क्या हो जाता। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही, देवता असुर मुनि सब कान दिए और सब आपस में व्याकुल होकर के विचारो हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोदंड खंडे उ राम, अरे राम जी ने तो शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, आओ तब तो फिर जयकार करो, जय हो जय हो जय हो, सब लोग जय जयकार करने लगे। इतना बड़ा भारी ये दुख था। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस है, सब उसमें डूब गए थे, सब तर गए। अब दोनों वहां पर तोड़ के डाल दिए और जो ही भगवान ने वो तोड़ करके जमीन पर डाले उस समय में भगवान का जो स्वरूप था कैसा विचित्र स्वरूप, कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम बारी अवगाव सुहावन, राम रूप राकेश नियारी बढ़त बीच पुलकावली भारी। विश्वामित्र जी रूपी तो एक सागर है और प्रेम का उसमें जल है और राम जी का रूप है वो एक तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा। जैसे गुरु अपने शिष्य को बड़ा देख करके प्रफुल्लित होता है, पिता अपने पुत्र को अच्छा देख करके प्रफुल्लित होता है, ऐसे राम जी रूपी राकेश को देखकर माने चंद्रमा को देख करके विश्वामित्र जी रूपी जो सागर है वही हुआ है, हिलोरे मारने लग गया। बढ़त बीच पुलका वाली बारी, विश्वामित्र जी बड़े खुश हो गए, खूब वहां पर दुंदुभियां बजने लगी, खूब वहां पर प्रशंसा होने लगी, फूलों की जब वर्षा होने लगी, लोग कहने लगे कि राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। झांझ मृदंग सेनाई बाजे ये सब वहां पर बाजने लगे, सबके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सखीर सहित हर्षी अति रानी, सुनैना जी बहुत खुश है, अरे सखी तुमने सच्ची बात कही, तुमने कही वही बात हो गई, जैसे सूखे धान पर वर्षा हो जाती है। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनुबाई। जनक जी को कैसे आनंद आया हो, जैसे कोई आदमी तैरते तैरते थक गया हो और उसको किनारा मिल जाता हो, ऐसे जाकर वो बड़ा संतोष होता है, ऐसे इनको बड़ा संतोष हो गया जनक जी महाराज को। और अब दूसरे राजा लोग तो मन मन में कई खटपट किए होंगे, परंतु सतानंद जी को आज्ञा मिली और सतानंद जी को कहा कि सतानंद जी अब आप सीता जी को लेकर राम जी के पास आइए। तो सतानंद जी महाराज अब सीता जी को लेकर के राम जी महाराज के पास आते हैं। अब कल जयमाला पहनाएंगे और कल परशुराम जी महाराज बड़े ठाट बाट से आएंगे वहां।
सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम
सीताराम सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम
सीताराम
जय सीताराम
जय सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम
यावर रामचंद्र की
जय
घोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा